ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय दूसरा और श्लोक संख्या 31 और 32। 31वां श्लोक उद्धव जी का ये स्मरण बता रहा है कि विपन्नान विषपानेन निग्रह भुज गादीपम उत्थाप्यया अपयाय अध्याय अस्तत्वयम् प्रकृतिस्थितम्। विपिन्नान यानी के महान विपदाओं परेशान, विषपानेन विष पीने से निग्रह दमन करके भुजग अधिपम सर्पों के मुखिया को उत्थाप्य बाहर निकालकर अपाय पिलाया गावा गौवे तथा उस तोयम जल को प्रकृति स्वाभाविक स्थितम स्थिति में। अनुवाद है, वृंदावन के निवासी महान विपत्ति के कारण परेशान थे क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख कालिय द्वारा विषाक्त हो गया था। भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे भगा दिया। फिर नदी से बाहर निकल आकर उन्होंने गांवों को जल पिलाया तथा यह सिद्ध किया कि वह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। आज का श्लोक है अयाजत गौ सेवेन गोपराजम द्विज उत्तम वित्तस्य च उरुभारस्य चिकीर्षन् सत् अव्ययम् विभो। अयाजयस्त्रोससेवेनो गोपराजं द्विजोत्तमै वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सदव्ययम् विभो। अयाजय द्रोससमेन गोपराजं द्विजोत्तमै वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सदव्ययम् विभो। अयाजय द्रोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमै वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सदव्ययम् विभो। अयाजत संपन्न कराया गो सवेन गौओं की पूजा द्वारा गोपराजम ग्वालों के राजा द्विज उत्तम ही विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वित्तस्य संपत्ति का च भी उरुभारस्य महान ऐश्वर्य चिकीर्षन् कार्य करने की इच्छा से सत्व्ययम् उचित उपभोग विभो महान। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद् ऐसी भक्तिविदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। भगवान कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक स्थिति का उपयोग गौओं की पूजा के लिए कराना चाहते थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को पाठ भी पढ़ाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी थी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गौ अर्थात चरागाह तथा गौओं की पूजा कराएं। क्योंकि भगवान सबों के शिक्षक हैं अतएव उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी शिक्षा दी। नंद महाराज एक संपन्न भूमिधर तथा अनेक गौओं के स्वामी थे और प्रथा के अनुसार वे प्रतिवर्ष स्वर्ग के राजा इंद्र की बड़ी पूजा ही सज्जस्य किया करते थे। वैदिक वाङ्मय में भी जनता द्वारा देवताओं की इस पूजा का पूजा की सलाह दी गई है, जिससे लोग भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करें। देवता तो भगवान के दास हैं, जिन्हें ब्रह्मांड विषय विविध कार्यों का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया गया है। इसलिए वैदिक शास्त्रों में सलाह दी गई है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य यज्ञ संपन्न करे, किंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति करता है उसे देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सामान्य जनों द्वारा देवताओं की पूजा परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करने की व्यवस्था है, किंतु ऐसा करना आवश्यक नहीं है। ऐसा तुष्टिकरण सामान्यतया भौतिक लाभों के लिए ही किया जाता है। जैसे कि इस ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में हम पहले ही कह चुके हैं, जो व्यक्ति भगवान की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार कर लेता है उसे गौण देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी अल्पज्ञ जीवों द्वारा पूजा तथा आराधना किए जाने से देवता गर्वित हो उठते हैं और वे भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। ऐसी ही घटना तब घटी जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में वर्तमान थे, अतः भगवान ने स्वर्ग के राजा इंद्र को पाठ सिखाना चाहा। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि वे इंद्र को अर्पित किए जाने वाला यज्ञ बंद कर दें और गौओं तथा गोवर्धन पर्वत पर स्थित चरागाहों की पूजा करके धन का समुचित उपयोग करें। इस कार्य से भगवान श्री कृष्ण ने मानव समाज को शिक्षा दी, जैसा कि भगवत गीता में भी उन्होंने उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपने समस्त कर्मों तथा उनके फलों द्वारा ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, इससे वांछित सफलता प्राप्त हो सकेगी। वैश्यों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि वे गौओं तथा उनके चरागाहों की कृषि योग्य भूमि को संरक्षण प्रदान करें और घड़ी कमाई को व्यर्थ न फूके, इससे भगवान तुष्ट होंगे। अपने व्यवसाय पर कर्तव्य की पूर्णता चाहे वह कर्तव्य अपने प्रति, अपनी जाति के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति हो, भगवान की तुष्टि की मात्रा से ही आंकी जा सकती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सर्वगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम का दसवां स्कंद का जो गोवर्धन लीला का प्रसंग है वो किताब है श्रीमद् भागवतम 10th कांड गोवर्धन लीला का प्रसंग, नहीं तो कृष्ण बुक उसमें। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो कृष्ण मुंडे जगत गुरु कहलाते हैं, तो भगवान सबको शिक्षा देते हैं। सारी शिक्षा उनसे आती है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुदियत सूर्य, ये सारी शिक्षा मानव समाज के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि मनुष्य मनु की संतान होकर मनु भगवान अवतार हैं, तो भगवान के ही संदर्भ में ये मनुष्य जन्म हुआ है, भगवान के नाते ही ये जन्म हुआ है मनुष्य जन्म। इसीलिए मनुष्य को शिक्षा, मनुष्यतर जो राक्षस योनि है और मनुष्यतर देवता योनि है, इन सबको शिक्षा एक सर की मिलती है। पशुओं को शिक्षा देने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो जो भगवान श्री कृष्ण यहां एक साथ साथ क्या क्या संपन्न करते हैं शिक्षा द्वारा, यहां ये बताया गया है कि देवताओं की पूजा के लिए भगवान का क्या मंतव्य है। देवताओं की पूजा में भगवत गीता के कहे अनुसार ते देवता देवा भावयन्तु वा, मनुष्य और देवताओं में कुछ संबंध है। जो आर्थिक व्यवस्था यानी कि जहां तक देह की सारी आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति करने के लिए देवताओं को मनुष्य के लिए सारा पर्याप्त रूप में मिले, ये सब प्रबंध भगवान ने इन लोगों से करवाया है। तो देवता प्रबंधक हैं, इसीलिए देवताओं की पूजा आवश्यक है जहां तक शारीरिक व्यवहार, इसीलिए देवताओं का अनुमोदन है। वेद में श्रीमद् भागवत में भी हम जहां तक शारीरिक आवश्यकता है वहां तक देवताओं की पूजा का समर्थन भगवान स्वयं करते हैं। लेकिन हम तो शरीर है ही, तो शारीरिक आवश्यकता कहां तक कितनी मर्यादा में होनी चाहिए, ये सब मनुष्य यदि धर्म परायण है तो मर्यादित रूप में ही रखेगा, तो उसे पर्याप्त शिक्षा की आवश्यकता होती है। क्योंकि आदर्श मनुष्य, आदर्श गृहस्थाश्रम, आदर्श वानप्रस्थाश्रम, आदर्श ब्रह्मचारी व्यवस्था, आदर्श संन्यास, क्या क्या व्यवस्था होती, तो ये सब भगवान के संबंध में भगवत प्राप्ति के विषय में बताई जाती है। क्योंकि शरीर भगवान का सीधा अंश नहीं, भगवान की अपरा शक्ति से बना है, भगवान उसे क्लेम नहीं करते, शरीर को क्लेम नहीं करते, भगवान आत्मा को क्लेम करते। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तेरा शरीर हूं, भगवान ने स्वयं कुछ नहीं कहा शरीर के बारे में, हमें हमारे शरीर को वो अधिकार नहीं देते, बल्कि शरीर में वो मालिक होते हुए भी हमें अधिकार देते हैं क्योंकि हम बस रहे हैं। तो भगवान कहते कि ममैवांश जीव लोके जीव भूत समान, ममैवांश ये जीव जो है जो शरीर का संचालन करने वाला है, यत्किंचित मात्रा में वो ईश्वर बताया जाता है। और भगवान की अनुरूपता से वो भी ये शरीर का संचालन करना चाहता है, ये थोड़ा समाज का भी संचालन करना चाहते हैं, यानी कि शरीर के विस्तार होगा, यानी कि भगवान की प्रतिकृति है, भगवान को भगवान का मिथ्या अनुकरण करने वाला, ऐसे मिथ्या अनुकरण करने वाला अपने गंतव्य स्थान को भूल जाता है। भगवान उसे फिर से याद दिलाने के लिए कि देख तू गुमराह हो रहा, कैसे तू आ सकता है, यदि अलग अलग अवस्थाओं के जो होती है मनुष्य के विकास की, जैसे भगवान कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्चित अतति सिद्ध है यतदाम अपनी सिद्धानाम कश्चित मान व्यती तत्वता, तो ये विकास की अवस्था तो बताते हैं मनुष्य को वो विकासशील प्राणी है, लेकिन वो आत्मा की शक्ति अपनी जानकारी और भगवान की प्रतिकृति में अनुकरणीय अनुकरण करने की जो आदत वाला है वो अपने विकास में जाए, लेकिन ये तो अपना सच्चा स्वरूप न जानते शरीर का ही विकास करना चाहे या शारीरिक अवस्थाओं का विकास करना चाहे या शरीर से जो जो उपार्जित है उसका विकास करना चाहता है। यदि उसकी बुद्धि ये भूमि भी मेरी है कह कह स्वधी कलत्रादिशु इज्ज बहुमति भी करे तो गोखर गदा का गदा कहलाता, यानी कि वो पशुवत ही, तो ये गुमराह होना है, इसलिए शिक्षा की आवश्यकता बताई जाती है। क्योंकि जीव अपनी मूल अवस्था को भूल गया है, तो प्रताड़ित करना प्रशिक्षित करना या जैसे आत्मा की जागृति हो तो वो धर्म कहलाता है, वो धर्म भगवान स्वयं सिखाते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा चालू कर देते हैं। इसलिए तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यते सुर, जब देखो ये देवताओं भी ये भौतिक प्रकृति की उत्पत्ति के संबंध में मूढ़ हो जाते हैं, मुह्यंती, उनको पता नहीं चलता कि ये कैसे हो रहा है सर, ये तो सब जो अर्थपूरक व्यवस्था को संभालने के लिए ही मर्यादित सेवा कर रहे हैं, फिर भी उनका देना है जिनको जिसकी आवश्यकता है तो उनकी पूजा की आवश्यकता है, लेकिन उनको भी प्रताड़ित करने की आवश्यकता है। लेकिन एक ही व्यक्ति जो परम व्यक्ति है और सबको अनुरूप शिक्षा देता है, नंद बाबा इत्यादि हर साल इंद्र पूजा करते थे, यूं देखे तो धार्मिक तो थे ही, धार्मिक अवस्था है कि देवताओं की पूजा का अनुमोदन दिया गया है तो क्यों ना करें, पर इन लोगों की समझ भगवान स्वयं होते हुए भगवान की सर्वोपरिता और भगवान की ही सेवा कराने के लिए होती है, उनकी स्वयं की, क्योंकि मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे अलावा कोई पर यानी सुपीरियर यानी उच्च नहीं है और इतर यानी अन्य यानी कि समान भी, ये सारी पुष्टि भगवान के द्वारा भगवान के चिंतकों के द्वारा ये न केन प्रकारण शास्त्रों में दी गई, वेदों में दी गई, श्वेताश्वतर उपनिषद भी भगवान पर सीधा निर्देश नहीं करता है, लेकिन वो जो तत्व है भगवान का उस पर निर्देश कर रहा है, उसे कहते हैं कि न तत्स्य कारणम कर्णम च विद्यते न तत् समासम अभी अधिक अच्छे दृष्टि, उनके बराबर और अधिक कोई है ही, तो कौन सा ऐसा तत्व है जब वो स्वयं प्रकट होता है उपस्थित होता है फिर भी इनके सामने यदि इनके चपरासियों की पूजा होती है तो वो कैसे सहन करेंगे, तो प्रताड़ित करना इनका कर्म बन जाता है। अब देखो अलग अलग स्तर के लोग हैं, कोई सिर्फ भौतिक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और अनेक सिद्ध हुए हैं उनमें से कोई भगवान के ये तत्व को भी यथार्थ रूप में जानने वाला है, कोई विरल ही होगा, उसके बाद ये कहते हैं ये जानने वाले भी बेकार है, भगवान के तत्व को जानने वाले भी बेकार है, बहुनाम जन्मनाम ज्ञान वाम माम प्रकृति, ऐसे तो अनेक अनेक जन्म उनको घुटाने पड़ेंगे, जब वो एकमात्र निर्णय पर आता है कि वासुदेवम सर्वमिति, तब वो भक्त बनता है, वो महात्मा कहलाता है, नहीं तो नहीं, दुरात्मा ही समझो। तो ऐसे ऐसे कितने भी भाग होते हैं जो अपनी अपने विकास के क्रम पर कहां कौन पहुंचा है, लेकिन ये सब को एक साथ साथ में उनके अनुरूप समझ आए, इनको इनके आत्मा की जागृति हो, उसी प्रकार भगवान व्यवस्था करते हैं समझाने के लिए। अब नंद महाराज को भी कितने अलग अलग ढंग से समझाते हैं कि ये इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। हा? वैसे छोटा बच्चा है, उनकी काली घेली जो बातें हैं माता पिता को ज्यादा आकर्षित करती है। वो तो प्रेम के भाव में वो बकवास भी करता हो, भी अच्छा लगता है बच्चे माता पिता को। बच्चे कुछ ना समझ आए ऐसा बोले थे, तो बहुत बढ़िया बोलता है, अच्छा मधुर लगता है। वो ही समझे वो बेचारा क्या बोल रहा है, लेकिन हर एक माँ बाप को यही लगता है कि मेरा बच्चा तो वो काली बहुत प्यारी लगती। तो उसी तरह जब भगवान सामने है, छोटे बच्चे हैं और अपनी बहुत सारी प्रेम भरी जो माँ बाप को यानी नंद महाराज इन सब को आकर्षित करने वाली भाषा बोलते हैं, चाहे वो समझे ना समझे, लेकिन इसमें तो भगवान अलग अलग ढंग से अलग अलग दलीलबाजी करते हैं। इतनी श्री प्रभुपाद जी ने जब कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कि ये किताब लिख रहे थे, तो स्वयं को ये पढ़कर इतना आनंद आता था, उनकी सारी टेप ये पुस्तक छपी, उससे पहले स्वयं प्रभुपाद जी ने सारी कृष्ण ट्रिलोजी उस समय तीन भाग में छपी थी, तो सब अंग्रेजी में मौजूद है। और ये यदि आप सुने और ये प्रसंग सुने तो प्रभुपाद जी इतने उत्साहित होकर बोलते हैं कि देखो ये भगवान कितने चालाक हैं और किन किन ढंग से इनको मायावादी ढंग से भी समझाते हैं, इनको अद्वैत सिद्धांत भी समझाते हैं, इस दलील से ये भी पूर्वार करना चाहते हैं कि नंद महाराज कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर सके सामने, ऐसा आसानी से वो स्वीकार नहीं। तो हम कुछ पढ़ना चाहते हैं। तो हे पिता, उदार तथा संत पुरुषों के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता, वे किसी को भी न तो मित्र मानते हैं, न शत्रु, नहीं तटस्थ, क्योंकि वे सबों के प्रति सदैव उदार होते हैं। यहां तक कि जो लोग इतने उदार नहीं होते वे भी अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों को कुछ नहीं छिपाते। यहां जो लोग शत्रुता रखते थे उनसे गोपनीयता बरती जा सकती है, अतः आप मुझे कुछ भी गोपनीय न रखें, मुझसे कुछ नहीं रखें। सारे के सारे मनुष्य सकाम कर्म में लगे रहते हैं, इनमें से कुछ जानते रहते हैं कि ये कर्म क्या है और उनके फल का भी पता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उद्देश्य से या फल को जाने बिना कर्म करते हैं। जो व्यक्ति पूरी समझ में कर्म करता है उसे पूरा फल मिलता है, और जो बिना जाने ऐसा करता है उसे पूरा फल नहीं मिलता। अतः आप मुझसे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दें जिसे आप करने जा रहे हैं। क्या यह वैदिक आदेशानुसार है या केवल लौकिक उत्सव है? कृपा करके मुझे इस यज्ञ के विषय में विस्तार से बताएं। देखो ये कर्म मीमांसा बता रहे हैं, ये कर्मकांड तो नहीं है, वेदों में बताया है क्या? तो नंद महाराज उत्तर देते हैं कि मेरे बेटे, यह उत्सव न्यूनाधिक परंपरागत है, क्योंकि वर्षा का राजा इंद्र की कृपा से होती है, और बादल से उसके प्रतिनिधि हैं, और चूंकि हमारे जीवन के लिए जल इतना महत्वपूर्ण है अतः हमें वर्षा के नियामक महाराज इंद्र के प्रति कुछ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। अतः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं क्योंकि उसने कृषि कर्मों को सफल बनाने के लिए ही बादल को प्रचुर वर्षा करने के लिए भेजा है। जल अत्यंत आवश्यक है, जल के बिना न तो हम जोत बो सकते हैं न अन्न उत्पन्न कर सकते हैं, यदि वर्षा न हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। यह वर्षा धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के लिए आवश्यक है, अतः हमें परंपरागत उत्सवों को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई काम लोभ या भय के कारण उनका परित्याग करता है तो यह उसे शोभा नहीं देता। ये सारा देहात्म बांध का उत्तर है। फिर भगवान कृष्ण ने अपने पिता तथा वृंदावन के समस्त प्रौढ़ ग्वालों के समक्ष इस प्रकार बोले, जिसे स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत कुपित हो जाए। उन्होंने सुझाया कि यह यज्ञ बंद कर दिया जाए। इंद्र को प्रसन्न करने वाले इस यज्ञ का निषेध करने के दो कारण थे। पहला कि भगवत गीता में कहा गया कि किसी भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। काम इष्टे रत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले सारे फल क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसे क्षणिक फलों में रुचि रखते हैं। दूसरा है कि देवताओं की पूजा से जो भी क्षणिक फल प्राप्त होता है वो वस्तुतः भगवान की कृपा से होता है। भगवद गीता में स्पष्ट कथन के माए वो विहितान ही दान, मेरे द्वारा ही तो दिया गया है देवताओं को अधिकार जो आपको बांटते हैं, तो मुझे सीधे क्यों नहीं देते। यानी कि देवताओं की पूजा करने वाले वैसे भगवान का सरोकार तो रखते हैं लेकिन भगवान कौन नहीं जानते, इसलिए वो देवताओं को भगवान बना देते हैं बहुत आसानी से। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि ये मेरी सीधी पूजा नहीं, ये चाप्य देवता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव यजन्ते अविधि पूर्वकम्। तो देवताओं से जो भी लाभ मिलता है वह वास्तव में भगवान द्वारा प्रदत्त है, भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। तो इस उद्देश्य से कृष्ण ने पाठ पढ़ाना चाहा। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्र को कुपित करने के लिए वृंदावन में ग्वाल बालों द्वारा की जाने वाली इंद्र पूजा बंद करा दी। इस उद्देश्य से कृष्ण इस प्रकार बात करने लगे मानो वे नास्तिक हो। सर्वप्रथम नास्तिक आर्ग्यूमेंट करने लगे, कर्म मीमांसा दर्शन के समर्थक हो। ये जैमिनी ऋषि ने नास्तिकवाद फैलाया, वो व्यास देव के ही चेले थे। कर्म मीमांसा कर्म को ही प्रधान, इस दर्शन के समर्थक भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे अवश्य अच्छा फल प्राप्त होगा। उनके मत से यदि मनुष्य को उसके कर्म का फल देने वाला ईश्वर विद्यमान भी हो तो उसके पूजन की कोई आवश्यकता नहीं, मतलब कर्म का सिद्धांत था। यदि फल ही प्राप्त करना है तो तू कर्म करता है, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरा कर्म करेगा तो वहां भगवान का लेना देना क्या, भगवान बीच में होते ही नहीं। ये नास्तिक लोगों कहते हैं। तो ये कर्म मीमांसा है। तो ये कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पिता, मेरे विचार से अपने कृषि कार्यों की सफलता के लिए आपको किसी भी देवता की पूजने की आवश्यकता नहीं। जहां तक कृषि कार्य, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, जहां ये कर्म पड़ा है आपके है? तो ये कृषि कार्य की सफलता के लिए किसी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान कर्म के फल को साथ लेकर इस जीवन को त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है वैसे उसके अनुसार अगला जन्म पाता है। विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख दुख लाभ तथा हानि विभिन्न प्रकार के कर्मों के प्रतिफल है जो पूर्व जन्म या इस जन्म में किए जा चुके हैं। यानी कि ये जब अच्छा ही कर्म का फल प्राप्त करना है तो इंद्र को खुश करने की आवश्यकता क्या है? हम कर्म करते तो अच्छे करो, पूजा करने की क्या आवश्यकता है? तो महाराज नंद तथा अन्य गुरुजनों ने तर्क किया कि प्रमुख देवताओं को प्रसन्न किए बिना केवल भौतिक कर्मों द्वारा कोई शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर सकता। उन्होंने समझा कि नहीं, इन लोगों की मदद की तो आवश्यकता है ही, हाँ थोड़ी चमचागिरी करनी पड़ेगी, इतना ही ना कर्म फल मिलेगा, जरा एक्सपेडाइट कर दे, जल्दी से त्वरित हो जाएगा। तो यदि हम किसी मरीज को डॉक्टर के पास ले जाता है, डॉक्टर नहीं बचा पाता, इसलिए हम मानने लगते कि नहीं नहीं इसमें भगवान का अवश्य कुछ हाथ होना चाहिए। तो ऐसा तर्क यहां कैसे काम करेगा? देखो, माता पिता अपनी संतानों का लालन पालन के लिए बच्चों के सुख का इनको कारण होता है। ये कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता द्वारा समस्त सावधानी बरतने के बावजूद बच्चे बिगड़ जाते हैं या मर जाते हैं। अतः फल के लिए भौतिक कारण पर्याप्त नहीं, तो कर्म पलायन था तो स्वतः देवता लोग करते हैं, देवता लोग भी कर्मपरायण है। तो स्वतंत्र रूप से देवताओं को कर्मफल देने की कोई छूट थोड़ी है, देवता स्वतंत्र नहीं, वो स्वतः कर्मपरायण है और मनुष्य भी कर्मपरायण है। अच्छा कर्म करने से मनुष्य को आसानी से कर्म फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन यूं देखें तो देवता यदि कर्म परायण हो तो मनुष्य को देवताओं की पूजा करने की क्या आवश्यकता? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि अपने कर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार हर व्यक्ति कार्यरत हो जाता है और सारे जीव चाहे मनुष्य हो या देवता इसी प्रकृति के द्वारा अपने फल प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य को अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए और विविध देवताओं की पूजा में ध्यान नहीं मोड़ना चाहिए। सारे देवता समस्त कर्मों के ये सारी कार्यान्वयन से ही प्रसन्न होंगे, यानी कि अच्छे ही रहेंगे, अच्छे ही कर्म करते हैं तो देवताओं की दखलगिरी की आवश्यकता नहीं होगी, वो तो प्रसन्न ही होंगे ऑटोमेटिकली। बुरे करो तो जब देखो हाँ कुछ हो, बुरे करे तो हम दानव बन जाएंगे और देवता और दानव में भेदभाव होता है, लेकिन हम देवताओं के पक्ष में रहकर ही यदि अच्छा कर्म करते हैं तो देवताओं की पूजा तो व्यर्थ ही रह जाती है, उसकी आवश्यकता रहती है। क्या आर्ग्यूमेंट? तो बाद में कहते हैं कि देखो पिताजी, यह दृश्य जगत प्रकृति के तीन गुणों सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अधीन चल रहा है। ये तीन गुण उत्पत्ति पालन तथा संहार के कारण रूप है। बादल की उत्पत्ति रजोगुण का प्रभाव से होती है, तो वर्षा का कारण ही यही रजोगुण है, ये प्रकृति के गुण है, उसे जबरदस्ती से बरसना पड़ेगा। इंद्र रजोगुण ही है, बरसाना ही पड़ेगा, कहां तक वो पानी छुपाएगा? वर्षा के बाद जीवों को फल अर्थात कृषि कार्य में सफलता मिलती है, तो फिर इंद्र का क्या लेना देना है? इसमें इंद्र का क्या लेना देना? इंद्र का कोई इस कार्य से प्रयोजन नहीं है। यदि आप इंद्र को प्रसन्न न भी करें तो भी वो क्या कर सकता है। महेंद्रम किम न करिष्यसि, ये इंद्र क्या नहीं करे, कुछ नहीं कर सकता, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। देख लेंगे वो क्या करेगा, आप फिक्र मत करो, दादागिरी करते देखे सही क्या हिम्मत है उसकी, क्या मजाल है। तहम पूजा करे या न करे, वह समुद्रदार पृथ्वी पर जल की वर्षा करता ही रहता है। जहां तक हमारी बात है, हमें किसी अन्य नगर या गांव या विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं। बड़े नगरों में बड़े महल होते हैं, किंतु हम तो वृंदावन के इसी जंगल में रहने से ही संतुष्ट हैं। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन के जंगल से, अन्य कहीं से नहीं। अतः हे पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिसे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं है। कृष्ण के इस कथन को सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, क्योंकि तुम कह रहे हो इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यज्ञ का आयोजन कर लूंगा, किंतु इस समय मुझे तो इंद्र का यज्ञ करने दे, ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते, तेरे लिए और एक यज्ञ करूंगा। तो कहता है, लेकिन कृष्ण भगवान टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा, पिताजी आप विलंब मत करें, आप गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं, इसमें ही काफी समय लगेगा। अतः अच्छा हो यदि इंद्र यज्ञ के लिए आपने जितनी तैयारी की है तुरंत इस गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मण को संतुष्ट करने कर दो। अंत तो गत्वा महाराज नंद को पसीजना पड़ा। तब ग्वालों ने कृष्ण से पूछा कि वे यज्ञ को किस तरह करना चाहते हैं। इसी तरह नंद महाराज का दिमाग घुमा दिया। कृष्ण भगवान हरेक को अपने अपने ढंग से समझाने के लिए समर्थ हैं, इसलिए वो भगवान है। हम तो एक व्यक्ति को समझाते दम निकल जाता है, दूसरा कोई और आए तो यानी प्रश्न, जितने व्यक्ति उतने प्रश्न, तो सब की कहां हम, सही ना। जब कृष्ण भगवान एक ही साथ सबके अलग अलग प्रश्नों को एक सीधे ही टाल सकते, अच्छी तरह से उनके समाधान कर सकते, इसीलिए सर्वज्ञ कहलाते हैं, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ। तो इस श्लोक में भगवान का ऐसा प्रभुत्व, इनकी वाक्पटुता, चतुरता इत्यादि भगवान के ये विशिष्ट गुण हैं, और इनका स्मरण उद्धव जी कर रहे हैं। तो इस प्रसंग के संबंध में किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? कृष्ण भगवान के आर्ग्यूमेंट आपके कानों में से यहां से यहां निकल गए, यहां रह गए या अंदर उतर गए, कहां पहुंचे?
तो हरे कृष्ण, आपने बोला था कि बारिश होता नहीं, इंद्र के हाथ में नहीं बारिश करने का,
नहीं जबरदस्ती से उसे करनी ही पड़ती है, ये उसका कर्म है।
तो फिर कैसा बारिश गिरता है? अभी वो गोवर्धन उठाया, इसलिए ज्यादा बारिश किया था ना,
ज्यादा करी कम करी कमी तो पड़ी ना, उसे भगवान थोड़े डरे, लेकिन उसका गर्व का खंडन, उसे अपने कर्मों पर बहुत नाज था, ये बहुत अभिमानी था कि मेरे जैसे ताकतवान कोई नहीं है। वो समझ रहा है कि ये उसका जो यज्ञ का जो हिस्सा है, ये हिस्सा नहीं है, सारा यज्ञ खुद के लिए होता है, यानी कि हड़प करना चाहता है। वो भूल गया था कि यज्ञ किसके लिए कर रहा है, उसमें यज्ञ शिष्टाशिनो संतु मुंचन्ते कपुष, तो देवताओं का भी यज्ञ में उच्छिष्ट भाग होता है, उच्छिष्ट यानी कि अलग उसका रखा गया है, ये तो सारा हड़प करना चाहता है, इसलिए वो अभिमानी कहलाता है। इंद्र यज्ञ सिर्फ इंद्र के लिए, लेकिन इंद्र को ये स्वीकारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि है, तो प्रतिनिधि यदि स्वयं भगवान का बनकर सारा यज्ञ का हिस्सा ले लेता है, और यहां तो मालिक खड़े हैं, तो मालिक के सामने इतना अहंकार बताने की उसको क्या आवश्यकता थी? भगवान यज्ञपति हैं, और ये भगवान के यज्ञ में भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, तो उसमें सहायता करने वाला इंद्र होता है, जबकि ये इंद्र भगवान को न देकर स्वयं के लिए सारा यज्ञ का जो फल प्राप्त करेगा।
वो इंद्र पहचानता है ना कि ये भगवान है?
नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, इसलिए तो उसने बारिश बरसाई, नहीं पहचाना। जब गोवर्धन उठाया तब पहचान पाया और माफी मांगने के लिए आया, तो यानी कि भगवान ने जब उसका अहंकार का खंडन किया तभी। गर्व पुरंदर हारी, इंद्र का गर्व का खंडन हो रहा है।
अच्छा, जब कालिया का दमन लिया भगवान ने, और उससे कहा तुम ठीक है, जो है अभी जमुना जी को छोड़ करके अपने स्थान पर चले जाइए, तो कालिया फिर किस प्रकार जो है अपने स्थान पर पदार्पण किया, कैसे गया परिवार?
हाँ, वैसे कालिया रमण द्वीप से ही आया था, सारे नाग रमण द्वीप के रहवासी थे, जहां तक कद्रु और वनिता उन दोनों बहनें थी, वो सब वो रमणिक द्वीप पर उन लोगों का वास था। कश्यप मुनि की ये दो पत्नियां थी, और ये दोनों पत्नियां दक्ष प्रजापति की बेटी थी, सही, तो प्रजापति होने के नाते और ये कन्या पर अधिक स्नेह होने के कारण कर्दम कश्यप मुनि ने इनको वरदान दिया, चलो आपकी इच्छा के अनुसार हम प्रजा देंगे। तो कद्रु ने कहा मुझे 1000 सर्पों की माता बनना, और वनिता ने कहा मुझे 2 ही बच्चों की माता बनना। तो इन लोगों के गर्भ में गर्भ नहीं अंडा रहा, 1000 अंडे रहे और दूसरे के 2, ये 1000 अंडे वाले तुरंत पैदा हो गए, ज्यादा देर नहीं लगी, और 1000 सत्व के वो अलग अलग प्रकार के वासुकी भी होते हैं, अनंत भी उसमें से आता है, अनंत भगवान की सेवा के लिए निर्मित था, वासुकी समुद्र मंथन के लिए, इसी प्रकार ये तक्ष कालीय इत्यादि सब ये कद्रु की प्रजाति। जबकि वनिता के 2 अंडे अभी तक ऐसे के ऐसे रहे, तो उसने एक को फोड़ा, तो उसमें से आधा ही जो आइना के पूरे पूरा विकसित नहीं हुआ ऐसा बच्चा का जन्म हुआ। वो तेजस्वी था, सब कुछ था, लेकिन उसने श्राप दे दिया उसकी माँ, तूने राह न देख कर मुझे ऐसा स्वरूप दिया, हमारे में तो दैवी तत्व है, फिर भी तूने ऐसा किया, तो हम तो अभी चले जाते हैं, क्योंकि हम इसी हालत में तो जिंदे नहीं रहेंगे, लेकिन अपना तेज सूर्य के समक्ष यानी कि उनकी सेवा में हम चले जाएंगे, तो ये अरुण बनकर सूर्य का सारथी, सूर्य के रथ को चलाने वाला अरुण कहलाता है, सही। अब उसने कहा जाते जाते कि माता, ऐसे कार्य से तुझे काफी कोसना पड़ेगा, गुलामगिरी करनी पड़ेगी जो भी है, लेकिन ये गुलामी से मुक्त करने के लिए तू ये दूसरे अंडे को मत फोड़ना, कम से कम 500 साल तक तुझे राह देखनी पड़ेगी। तो विनीता ने स्वीकार कर लिया, वो अरुण अपनी स्थिति में चला गया, और वनीता ने राह देखी। 500 साल पूरा होने के बाद बड़े पक्षीराज गरुड़ जी का जन्म हुआ, सही। अब ये रेवत तक पर्वत है, जब समुद्र मंथन की आवश्यकता रही, शुरुआत हुई, समुद्र मंथन ने वसु की इत्यादि सभी भाग लेने गए, और कद्रु और वनिता देखते रहे समुद्र मंथन में हमें भी तो हिस्सा मिलेगा, जो रत्न निकलते हैं हम भी देखेंगे। तो समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें उच्च श्वा का घोड़ा निकला, बहुत सुंदर ऐसा ऐश्वर्य संपन्न हुआ, लेकिन एक घोड़ा कितना आकर्षक था, तो एक दूसरे से पूछने लगे, तुझे कैसा लगा ये, तुझे कैसा लगा। तो कद्रु ने वनिता को पूछा ये कैसे रंग का, तो वनिता ने देखा कि श्वेत रंग का है, सफेद है। तो हाँ, तब ईर्षा का भाव वो कद्रु में आया, और कहती है कि यदि सफेद न हो तो तुम मेरी गुलाम हो जाएगी। तो हाँ ठीक है, मुझे तो सफेद दिखाई देता है। तो बस इस पर दोनों तन गई, और सुबह जैसे उठी सूर्य प्रकाश ने देखा, लेकिन इस बीच में वनिता ने कद्रु ने अपने पुत्र को बुलाया कि आपको आज्ञा देती हूं, ये घोड़ा सफेद तो है लेकिन मुझे अपना सामित्व बताना है, तो आप लोग काले सर्प बन जाओ और घोड़े की पूछ में ऐसे छुप जाओ जैसे पूछ काली बन जाए। तो सर्पों ने कहा कि ऐसी ऐसी बात क्या है, हमें तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं लग रहा है, उच्च शवा तो ये तो महारत्न कहलाता है, क्यों नहीं। तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट, तो माता ने कहा अभी से माँ के प्रति इतना अनादर, आप माँ की आज्ञा भी नहीं पालन करना चाहते। तुमने उन्होंने देखा कि ये तो गलत है, फिर भी जब सुना कि नहीं तो वो माता को वनिता की दासी बनना पड़ेगा, तो ये ईर्ष्या भाव पॉलिटिक्स चालू कर दी। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम भी कुछ गैर रीति करेंगे, ऐसे छिप जाएंगे और कुछ काली दिखाई देगी, सब काले ही होते। तो दूसरे दिन सुबह उठी, दोनों निरीक्षण करने गए तो सचमुच ये पूछ काली दिखाई दी, क्योंकि सब छुपे थे इसमें। तो वनिता ने अपनी हार कबूली और उसकी दासी के रूप में बनी। तब से गरुड़ जी ने देखा कि ये लोग ने गलत चाल चली है, इसीलिए सारे सर्पों को सफाई कर दी। उसमें काली भी ईर्ष्यालु निकला, क्योंकि आगे समुद्र मंथन में जब भगवान विष्णु ने स्वयं लक्ष्मी जी को लिए और गरुड़ जी को भी पसंद किया कि हम आपको सेवा देंगे, तो गरुड़ को भगवान सेवा देते हैं, तो कालिय ने सोचा कि हाँ हम भी तो उनके ही मौसियाई भाई हैं, तो हमारा भी नंबर लगना ही चाहिए, ये भगवान कैसे पक्षपात करते, इसकी भी बहुत तीव्र इच्छा थी। लेकिन ये इच्छा ईर्ष्या युक्त थी, इसलिए कालिय बहुत विशील थी, लेकिन गरुड़ ने वहां से भगाया। तो छुप कर वो यमुना में आया, यमुना में पानी दूषित करने लगा, तब भगवान ने उसे प्रताड़ित किया। अब जाते समय कहने लगा कि भगवान आप हमें वापस रमणीक द्वीप में ही भेज रहे हैं, वहां तो गरुड़ जी आपका सेवक है, इसलिए पक्षपात होगा, ये अभी हम कैसे जी पाएंगे, ऐसे तो है ठीक है कि हम मर ही जाते हैं, आपके हाथों से मुक्ति हो जाती। तो भगवान कहते तो चिंता मत कर, तेरी भी ईर्ष्या थी ना, ये ईर्ष्या के गरुड़ जैसे मुझे मेरा वाहन है, तो तू भी मेरा वाहन बनेगा, तो मैं तेरी खना पर मैंने नाच किया है, मैंने तुझे मौका भी दिया, अब तू चिंता रहित हो जा, क्योंकि मेरी ये मेरे चरण चिन्ह देखकर गरुड़ जी तेरे पास आएंगे ही नहीं, इसलिए तू चला। प्रभुपाद जी कहेंगे फिर से फिजी पहुंच गए रमणीक द्वीप में, हम कालिय के दर्शन के लिए हर साल दो बार जाते हैं। सर ये ईर्ष्या का भाव है, गरुड़ जी से उसे ये सुरक्षा मिल गई। भगवान ने कहा तेरी इच्छा भी मैंने पूर्ण की, तुम मुझे वहन करना चाहता ले, मैंने इस ढंग से तेरे में ईर्ष्या भाव था। तो ये महाभारत में कथा आती है, पानी के द्वारा, तो सर्प कहाँ आकाश मार्ग से जाएगा, अरे आकाश मार्ग पानी मार्ग क्या फर्क पड़ता है, गया पहुंचा है, वहां के लोकल लोग भी मानते हैं कि काली नाथ हमारी सुरक्षा कर रहा है, सही है। वहां ऐसी मान्यता के अनुसार एक पहाड़ है, वैसे तो ये समुद्री जगह में जो उल्काएं होती हैं, उल्का नहीं तो ये ज्वालामुखी पर्वत समुद्र के, तो वो जब उभर आते हैं फटता है तो बड़े बड़े पर्वत बन जाते हैं, तो ये पर्वत निकला, बहुत फलद्रुप जगह है। फिर भी वहां पत्थर भी ऊपर उठते हैं, इनका विकास हो रहा है, तो एक एक पत्थर नाक की फणा जैसा है, तो अपने भारतीय लोग ही गए जानते हैं ये कहानियां सारी, तो कहके यही काली नाग था तो उसकी पूजा करने लगे, और देखो ये पत्थर कम से कम थोड़ा थोड़ा ऊंचा हो रहा है, और देखते हैं कि कहां कुछ हो रहा है, तो सबको ये मान्यता है। लेकिन वहां के जो आदिवासी लोग हैं वो भी ऐसे ही मानते हैं कि एक बड़ा नाग समुद्र में लटार मार रहा है, किसी ने देखा है किसी ने नहीं देखा है, कोई कहते हैं ये पर्वत पर छुपा है ये, तो वैसे टूरिज्म का भी अट्रैक्शन बन गया है वहां, पर्यटक विभाग ने भी कुछ ऐसी सराहना की, और अपने हिंदू लोग जाते हैं तो उनके पास पूजा करा के भी कुछ पैसे निकालते हैं, ऐसी हकीकत है। भगवान चालाक है। जय जगत गोविंद प्रभुपाद की।